सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए निजी निवेश और विकास के लिए ब्रिक्स देशों में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत जितेंद्र कुमार त्रिपाठी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना।
आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे निजी पूंजी जुटाने और विकास के वित्त पोषण के लिए ब्रिक्स सहयोग, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भूतपूर्व राजदूत जितेंद्र कुमार त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
नमस्कार
त्रिपाठी जी, जैसा हमें पता है कि अभी ब्रिक्स के जो वित्त मंत्री हैं और जो केंद्रीय बैंक्स के गवर्नर्स हैं उनकी मीटिंग जयपुर में हुई, जिसमें बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। खास तौर से जो हम वित्त विकास की जब हम बात करते हैं और विकास के लिए जो पूंजी के मोबिलाइजेशन को या पूंजी को जुटाने की बात करते हैं, और इसमें ब्रिक्स की मीटिंग थी, तो निश्चित रूप से इस दिशा में ब्रिक्स के देशों के बीच में किस तरह का तालमेल, कैसा सहयोग हो सकता है, इस बारे में विशद चर्चा हुई। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा त्रिपाठी जी कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये पूरा विषय क्या है, जब हम विकास के लिए वित्त जुटाने की बात करते हैं और पूंजी की हमें जरूरत होती है विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये पूरा विषय, पूरा संदर्भ क्या है, आप सरल भाषा में हमारे श्रोताओं को बताएं।
धन्यवाद अमरीश जी। ऐसा है कि किसी भी देश के विकास के लिए पूंजी की जरूरत होती है। ब्रिक्स प्लस में जितने भी देश हैं सभी विकासशील देश की श्रेणी में हैं, और इन देशों में विकास के लिए तरह तरह की परियोजनाएं, सड़क परियोजना, जल मार्ग परियोजना, एयरपोर्ट के तटीय परियोजनाएं, बिजली, पानी, कम्युनिकेशन, इन सब की जो परियोजनाएं होती हैं उनकी जरूरत होती है। और इस परियोजना के लिए, हर काम के लिए जैसे पूंजी की जरूरत होती है, वैसे ही इन सब परियोजनाओं के लिए जरूरत होती है। अब ये पूंजी कहाँ से जुटाई जाए, इसके तीन तरीके होते हैं। एक तो देश की सरकार के पास जो इनकम टैक्स से, जो कस्टम से, कलेक्शन से जो रेवेन्यू आती है उससे खर्चा किया जाए। दूसरा खर्चा किया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर के किया जाए, और तीसरा है कि प्राइवेट पार्टी से वित्त पोषण कराया जाए, चाहे वो पूरी तरह प्राइवेट हो, चाहे वो पीपीपी में हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हो। अब देखिए, जो धनी सरकारें हैं या जो बड़ी सेंट्रलाइज सरकारें हैं जैसे चीन की हुई या रूस की या कहीं डिक्टेटरशिप की सरकार है, वो तो सरकार जो है वो पैसे पर बैठी रहती है, उसको जितना चाहे जिस हिसाब से चाहे खर्च करती है, अपने नागरिकों की भले ही भलाई ना हो उसमें डायरेक्टली, लेकिन फिर भी वो खर्च करती है, उसको तो दरकिनार करके भी उनकी बेसिक जरूरतों जैसे स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ, इन सबको दरकिनार करते हुए भी करीब करीब। लेकिन डेमोक्रेटिक सरकारें जो होती हैं, लोकतांत्रिक सरकारें, उनके सामने सिर्फ विकास परियोजनाएं नहीं होती बल्कि कई और चीजें होती। एक तो सरकार का खर्चा
जी,
दूसरा उनके जो संस्थान हैं, उनकी संसद है, उनके
विधानसभाएं
हैं, सरकारी खर्चे हैं, उनकी जो अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो उनके रेलवे वगैरह चल रही, उनके लोगों की तनख्वाहें वगैरह। तो विकासशील देशों के पास इतना पैसा नहीं होता सरकारों के पास कि वो स्वयं इसमें सारा कुछ कर सके, इसीलिए आपने देखा होगा कि उनका बजट हमेशा घाटे का बजट होता है। अब अगर उनके पास ये पैसा नहीं है तो वो या तो कुछ हद तक विश्व की संस्थाओं से, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से, लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से जुटाएंगे या कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से जुटाएंगे। हमारे यहाँ अभी तक समस्या ये थी कि हमारे यहाँ पिछले 20-25 साल पहले तक तो प्राइवेट पार्टनरशिप की बात ही नहीं थी। प्राइवेट जो है वो ये माना जाता था कि प्राइवेट बिजनेसमैन वो सिर्फ अपने भलाई के लिए काम करेगा और उससे किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन बाद में ये समझा जाने लगा कि बिजनेसमैन भले ही अपना प्रॉफिट ले, अपना लाभ हो, लेकिन अगर वो एक प्रोजेक्ट करता है तो उससे टर्शियरी एम्प्लॉयमेंट भी होता है, उससे और भी तरह के फायदे होते हैं। अगर वो सड़क बनाता है तो सड़क बनाने का मतलब ये नहीं है, सड़क बनाता है या सड़क है, बस चलाता है समझिए, तो बस चलाने वाला जो है वो सिर्फ बस से किराया वसूल करेगा, उसका फायदा तो होगा लेकिन उससे की मोबिलिटी बढ़ जाएगी लोगों में, लोग एक जगह दूसरी जगह जाएंगे, व्यापार बढ़ेगा, ये एक दूसरा फायदा होता है। तो अब इस चीज को समझा गया है
जी, इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे आपने जिक्र किया बाद में ऐसा होने लगा, तो मैं समझता हूँ कि जो आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई 1990 के दशक में, उसके बाद से जिस तरह से अर्थव्यवस्था भारत की और तमाम जो विकासशील राष्ट्र हैं उनकी खोली, तो ये जो निजी पूंजी का प्रवाह उसके साथ ही बढ़ा। अगर आप इसके बारे में और कोई जानकारी देना चाहें, और साथ ही जो ये निजी पूंजी जब आती है या जो पूंजीपति हैं वो अपना धन लगाते हैं, तो सरकार और निजी पूंजीपति के बीच में जो विकास के लिए सहयोग है उसके क्या मुख्य ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसमें दोनों एक साथ आते हैं?
जो भी ऐसी विकास परियोजनाएं हो रही हैं उसका एक पहले प्रारूप एक खाका होता है कि ये सड़क ऐसे बनेगी या ये पोर्ट ऐसे डेवलप होगा या रेलवे ट्रैक ऐसे डेवलप होगा या ये स्टेशन ऐसे डेवलप होगा या बिजली घर ऐसा डेवलप होगा। तो जो वो डेवलपमेंट होता है तो एक तो ये परियोजना का होता है कि जितना काम कहा गया है उतना होना चाहिए, उतने समय में होना चाहिए और उतनी गुणवत्ता के साथ होना चाहिए। ये पैरामीटर, इसके साथ ही ये भी पैरामीटर है कि अगर आप वो कार्य कर रहे हैं तो काम में गुणवत्ता में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, कोई समझौता नहीं होना चाहिए। वर्कर्स जो हैं उनके हित को भी ध्यान में रखना चाहिए, उनके स्वास्थ्य पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज ये भी है कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल अब्रॉड नहीं होनी चाहिए इतनी। ठीक है, आप अगर बाहर से आ रहे हैं इन्वेस्ट करने तो ठीक है, आप उसका पैसा ले जा सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप सारे का सारा पैसा वहां ले जाएं और यहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ ना हो। ये भी इसमें ये पैरामीटर में होता है कि आपकी जितनी अर्निंग होगी, जितनी आपकी आय होगी, उसका इतना प्रतिशत आपको यहीं पे फिर से निवेश करना होगा। तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके अंतर्गत सरकारें और व्यक्तिगत या कॉरपोरेट समझौता करते हैं।
जी, और चूंकि ये हम बात कर रहे हैं जो ब्रिक्स के अभी मीटिंग हुई, जो बैठक हुई उसके संदर्भ में, तो अगर मैं ये जानना चाहूँ आपसे कि जो निजी क्षेत्र है, जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में ही निजी क्षेत्र सरकार के साथ सहयोग करके विकास की परियोजनाओं में भागीदारी करेगा, या जो ब्रिक्स के और देश हैं वहाँ के जो निजी पूंजी वाली संस्थाएं हैं, क्या उनके साथ भी आपस में किसी सहयोग की बात है?
हाँ, देखिए, मेरे ख्याल से तो सहयोग द्विपक्षीय होगा, सिर्फ एक देश के लोगों के बीच में नहीं होगा, पूरे ग्रुप के बीच में होना चाहिए कि न सिर्फ भारत में सरकार और प्राइवेट निवेशक सहयोग करेंगे या न सिर्फ भारत में सरकार और बाहर के प्राइवेट निवेशक करेंगे, बल्कि सरकारें और प्राइवेट निवेशक ब्रिक्स के समूह के एक दूसरे देशों में भी निवेश करेंगे।
जी, तो क्या इस तरह का भी कोई प्रस्ताव है कि ब्रिक्स के देश आपस में मिलकर कोई ऐसी बैंकिंग प्रणाली विकसित करें जिससे कि जिस भी देश को विकास के लिए धन की जरूरत है तो उस बैंक से उसको मुहैया कराया जा सके?
देखिए, 2012 में एक न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी जिसका अभी 100 अरब डॉलर के करीब उसका कोष है, और उसकी स्थापना इसीलिए हुई थी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कि वो डेवलपमेंट या विकास की बातों में ब्रिक्स के सदस्यों के बीच में, जो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक स्थापित हुआ 100 अरब डॉलर की, उससे ये परियोजनाएं ब्रिक्स के देशों में, एक देश में एक देश द्वारा दूसरे देश में की जाने वाली, या ब्रिक्स के देशों में से किसी द्वारा ब्रिक्स के बाहर के देशों में की जाने वाली कामों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसके साथ ही साथ अब ये भी है कि कुछ और चीजें की गई हैं, जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने बहुत क्रिटिकल रोल पैदा किया है, मल्टीलेटरल गारंटी मैकेनिज्म की बात ही कर रहा है। फिर एक और इम्पोर्टेंट एरिया जिसमें ब्रिक्स के ही कॉपरेशन में है कि डेवलपमेंट में लोकल करेंसी फाइनेंसिंग, कि आप ऐसा ना करें कि अगर आप डेवलपमेंट के लिए पैसे दे रहे हैं तो उसको डॉलर में या युआन में दें, आप लोकल करेंसी में दें, ताकि लोकल करेंसी उस फ्लक्चुएशन से बची रहे जो फॉरेन करेंसी के साथ उसका होता है। तीसरा ये कि आप ग्रीन और सस्टेनेबल फाइनेंस करें, उस पर ज्यादा जोर दें, जो पर्यावरण को दूषित न करे जो प्रोजेक्ट, उस पर ज्यादा जोर दिया जाए। ये मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक
है। इसमें जो हमारी सेंट्रल बैंक हैं, केंद्रीय बैंक हैं, किसी भी देश में जो सारे हमारे ब्रिक्स प्लस देश हैं, तो वो जो सेंट्रल बैंक है उनकी क्या भूमिका है?
देखिए, किसी भी देश की सेंट्रल बैंक की भूमिका ये होती है कि अगर उस देश में कोई प्रोजेक्ट कहीं से बाहर से इन्वेस्टमेंट से लाया जा रहा है तो वो इन्वेस्टर की टर्म्स एंड कंडीशंस पे इन्वेस्ट करने को तैयार है, कितने दिन में वो जेस्टेशन पीरियड होगा उस प्रोजेक्ट का, कितने दिन बाद उससे आपको पैसा मिलना या उसका उत्पादन करना शुरू होगा, कितने दिन बाद उसका पूरा पैसा जो है इन्वेस्टर का उसको मिल जाएगा। जैसे सड़कें बनती हैं, सड़कें बनती हैं तो उसमें यह होता है कि टोल टैक्स लिया जाता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, प्राइवेट आदमी ने सड़कें बनाई, टोल टैक्स लिया, लेकिन वो हमेशा के लिए टोल टैक्स नहीं ले सकता, एक सर्टेन पीरियड तक के लिए टोल टैक्स ले सकता है। तो यहाँ विदेशी इन्वेस्टमेंट की बात आती है, वहां पर सेंट्रल बैंक यानी हमारे हिसाब से भारत के संदर्भ में ये रिजर्व बैंक करता है। तो वो रिजर्व बैंक ये सब चीजें देखेगा कि ये जो पैरामीटर जिनके आधार पर किया गया है, कोई प्रोजेक्ट मंजूर किया गया है, वो उनके हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और इतना ही नहीं, इस मीटिंग के द्वारा जो वित्त मंत्रियों की है, इसमें एक चीज ये भी सुनिश्चित की जा रही है कि ब्रिक्स समूह के विभिन्न देशों के जो रिजर्व बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, वो एक ऐसी यूनिफाइड पॉलिसी बनाए जो कि ब्रिक्स के सारे देशों में कम से कम लागू हो, ताकि किसी भी देश को दूसरे देश में जाकर कोई प्रोजेक्ट करने में या कुछ इन्वेस्ट करने में कोई समस्या का सामना न करना पड़े।
जी, जब हम त्रिपाठी जी विकास की बात करते हैं तो एक पूरे जैसे हम ढांचागत परिवर्तन की बात करते हैं, एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो बड़ी पूंजी की जरूरत है, तो ऐसे जो क्षेत्र हैं वहां पर निजी पूंजी की निश्चित रूप से जरूरत पड़ती है। तो सड़क निर्माण के अलावा और मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र हैं जिनमें विकास के लिए हमें बड़ी पूंजी की जरूरत है?
देखिए, हमें सड़क निर्माण में बड़ी पूंजी चाहिए, हमें शिप बिल्डिंग में चाहिए, हमें बंदरगाहों के निर्माण में चाहिए, तटों के निर्माण में चाहिए, हमको सिविल एविएशन जहाज के निर्माण में चाहिए, जहाज के उत्पादन में चाहिए, हमको स्टील वगैरह के उत्पादन में चाहिए, हमको गैस पेट्रोल इसके रिफाइन और डाउन स्ट्रीम दोनों में इसके इन्वेस्टमेंट के लिए हमें पैसा चाहिए। इसके साथ ही आप डिफेंस सेक्टर खुला तो डिफेंस के लिए भी हमें डिफेंस में कई चीजें बनाने के लिए पैसा चाहिए, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए चाहिए, तो देखिए अभी उसमें प्राइवेट सेक्टर आ रहा है धीरे धीरे, कई ऐसी चीजें हैं खनन के लिए हमें
जी जी, खासतौर से अगर हम बात करें जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है वो आजकल की है, कोई भी हम विकास का काम करें, तो इन क्षेत्रों में किस तरह की और संभावनाएं दिखती हैं आपको निजी क्षेत्र की भागीदारी की?
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अपरिमित संभावनाएं हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर आप डिजिटल पेमेंट एक जगह से दूसरी जगह कर रहे हैं, आपने देखा अभी कितनी बाढ़ आ गई है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की
जी,
तो एक बार आप खोलिए रास्ता तो देखिए लोग आएंगे। और टेली कम्युनिकेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके डिजिटल डेटा के प्रोटेक्शन में, जिसमें हम अभी काफी पीछे हैं, उसमें बड़ी पूंजी की जरूरत है। ऐसे कंप्यूटर्स, ऐसे सुपर कंप्यूटर्स बनाएं, ऐसे प्लेटफॉर्म बनाएं जिससे कि हमारा डिजिटल डेटा बाहर न जा सके, वो डिजिटल डेटा यहाँ पर सुरक्षित है।
जी त्रिपाठी जी, अगर हम भारत की खासतौर से बात करें, भारत सरकार ने बहुत सारे इस तरह के कदम उठाए हैं जहाँ पर विकास की परियोजनाओं को निजी भागीदारी के साथ आगे बढ़ाया जा सके, जैसे हम पीएम गति शक्ति की अगर बात करें, या हम जो इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात करें, तो इस तरह के जो कदम भारत सरकार ने उठाए हैं इनके बारे में आप कुछ और जानकारी देना चाहेंगे?
इस क्षेत्र में भारत सरकार ने काफी कदम उठाए हैं, जैसे आपने कहा गति शक्ति योजना प्रधानमंत्री की है, वो इस मामले में काफी सफल रही है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट करने के मामले, जहां रोड है वहां ठीक है, जहां रेल है वहां तक ठीक, अगर नहीं है तो तीसरा मॉडल वाटरवेज अगर आप उससे भी शुरू करें। आपको ध्यान होगा कि शायद ये योजना है अभी पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं हुई है कि कलकत्ता से और प्रयाग तक
जी
गंगा बड़ी हो जाती है तो
जलमार्ग
का विकास किया जाए। हम म्यांमार के लिए जलमार्ग का विकास कर रहे हैं और मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कालाधान योजना, ये जो है सरकार काम कर रही है
जी।
लेकिन कई इसमें क्षेत्र हैं जिसमें हम उतनी तेजी से नहीं काम कर रहे हैं जितनी तेजी से काम करना चाहिए।
जैसे कि हम अगर जिक्र करें जो फ्रेट का जो सामान इधर से उधर ले जाया जाता है मालवाड़े, उस क्षेत्र में भी आपको लगता है अभी और काफी संभावनाएं हैं पूंजी की?
हाँ देखिए, अभी जैसे फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ बनना ही ठीक नहीं है, बनने के साथ साथ आपको ये भी करना चाहिए कि जैसे अगर उस पर फ्रेट लेकर के कोई वाहक जा रहा है तो जगह जगह पर उसकी चेकिंग की भी संभावना होनी चाहिए, और ये भी होना चाहिए कि कहीं से पिलफरेज की कोई वो ना हो, कहीं परेशानी हो, कोई इमरजेंसी हो तो उसके लिए भी सहायता दी जाए।
त्रिपाठी जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे निजी निवेश और विकास के लिए ब्रिक्स देशों में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत जितेंद्र कुमार त्रिपाठी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
सुर्खियों में